थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी अपने परिवार और प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी मित्रों का भी जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इतने ही नहीं, वह चाहता है कि हम उसकी शरण में आए, विश्वास में बढ़ते रहें, और इतना ही नहीं, वह चाहता है कि उसका काम बदला लेने का है तो वही ले, ना कि हम ले। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने यह अवसर दिया है कि आपके वचन को रेडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। आज जब वे आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रता पन दे ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक श्रोता भाई बहन से आपका वचन बोलने और बातचीत करने पाए। आज जब हम अध्ययन करते हैं, पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक से बातचीत करें, हमारे विश्वास को दृढ़ करें, हमें मजबूत करें। जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और परेशान में हैं, आप उन्हें भी शांति और छुटकारा दे, चंगाई दे, अपनी महिमा ले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 1 और 2 पद का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का विषय है विश्वास। मेरे मित्रों, हमने देखा कि प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करके फिर हम विधि विधान के भ्रम जाल में पड़ जाएं, तो हम उसके लहू को पांव तले रौंदते हैं और परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु का, जो उसने हमारे लिए क्रूस पर भोगी, उसका अपमान करते हैं और हम परमेश्वर के दंड के लिए निश्चित हैं। अब अध्याय 11 से 13 में इब्रानियों की पत्री का दूसरा मुख्य भाग आता है। यहां तक तो इस पत्री में धर्म सिद्धांत का विचार व्यक्त किया गया है और अब हम व्यवहारिक बातों को देखेंगे। अतः इस अध्याय को हम विश्वास का अध्याय भी कहेंगे। हम प्रायः यह सोचते हैं कि विश्वास प्रायोगिक नहीं है, परंतु हम देखेंगे कि वह वास्तव में व्यवहारिक है। मेरे प्रिय मित्रों, अनेक विचारक इस अध्याय को नायकों की सूची भी कहते हैं। मैं इस अध्याय को विश्वास के दृष्टिकोण से देखता हूं। अदन की वाटिका से इस समय तक विश्वास ने हर एक युग के स्त्री और पुरुषों के जीवन में क्या किया है, इस अध्याय से प्रकट होता है और ये विश्वास के नायक हैं। ये विश्वास के नायक हमें विश्वास के जीवन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मसीही जीवन को नियमों का एक क्रम बनाना बहुत आसान है, और यही कारण है कि बहुत से विश्वासी पर्वतीय उपदेश और 10 आज्ञाओं के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं। मैं जब किसी नए स्थान पर जाता हूँ तो ये दिशा निर्देश पूछता हूँ, और लोग मुझे लिख कर दे देते हैं, जैसे सीधे जाकर बाईं ओर मुड़ना, तब वह ब्लॉक पार करने के बाद आप दाहिनी ओर मुड़ जाना आदि। मुझे यह तरीका पसंद है क्योंकि इसमें निर्देशों का पालन करना आसान है। अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन ऐसा ही है, वे नियमों का स्पष्ट क्रम पालन करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो सर्वथा भिन्न मार्ग पर चले। वे विश्वास का जीवन जिए, और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम भी ऐसा ही जीवन जिए एवं आचरण रखें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अविश्वास सबसे बड़ा अपराध है जो मनुष्य करे। परमेश्वर के पास हर एक पाप का उपचार है, परंतु अविश्वास का नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि एक अक्षम्य पाप भी है। ऐसा कोई काम नहीं जिसकी क्षमा परमेश्वर ना दे, परंतु यदि आप अविश्वास में हैं, तो परमेश्वर के पास उसका उपचार आपके लिए नहीं है। मेरे मित्रों, हम देखेंगे विश्वास की परिभाषा। इस अध्याय का पहला ही कथन विश्वास की धर्मशास्त्र आधारित परिभाषा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर ने मनुष्य को 2 मार्ग दिए हैं जिनके द्वारा वह परमेश्वर के निकट आ सकता है। पहला, कर्म करके परंतु आपके कर्म सिद्ध हों, और आज तक तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो कर्म के द्वारा सिद्ध हुआ हो, ना तो आदम, ना अब्राहम, ना दाऊद और ना दानियल, कोई भी नहीं। अतः यह कार्यकारी मार्ग नहीं है, परंतु बहुत से लोग हैं जो अब भी कर्म कांड में व्यस्त हैं। दूसरा मार्ग है विश्वास का, परंतु इसमें भी बहुत लोगों को संतोष प्राप्त नहीं होता है। जैसे एक छोटी लड़की ने कहा, विश्वास यह है कि आप जिसे जानते नहीं है उसे स्वीकार करें। अधिकांश मनुष्यों के लिए विश्वास का अर्थ यही है। लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ है अंधेरे में छलांग लगाना या एक प्रकार का जुआ खेलना। यदि आपके विचार में विश्वास यही है तो आप में विश्वास नहीं है। जी हाँ, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का जो अनदेखी है उनका प्रमाण है। इसका अर्थ यह है कि विश्वास का एक आधार है। कुछ लोगों के लिए विश्वास एक रहस्य है, छठी इंद्री है जो आत्मिक क्षेत्र में देखती है, या एक नए संसार में खुल जा सिमसिम है। उनके लिए विश्वास का अर्थ है कि आप एक गुप्त क्षेत्र में दीक्षा ग्रहण करते हैं और परमेश्वर भले कामों की अपेक्षा रहस्यमय काम ग्रहण करेगा। यदि आपका विश्वास कठिन प्रयास का परिणाम प्रयास ही है, तो मेरे मित्रों, दुष्ट आत्माएं विश्वास में हमसे आगे हैं, परंतु वे उद्धार से रहित हैं। आज अनेक शैतानी संप्रदाय हैं। इन लोगों के लिए विश्वास गले में लटकाने वाला एक प्रकार का ताबीज है। यह तो विश्वास नहीं है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था, प्रभु यीशु को थामने से उद्धार नहीं होता है, प्रभु यीशु उद्धार दिलाता है। मसीह यीशु में आनंद मनाने से उद्धार नहीं है, प्रभु यीशु उद्धार दिलाता है। प्रभु यीशु में विश्वास करना भी उद्धार का कारण नहीं है, जबकि वह एक साधन अवश्य है। उद्धार प्रभु यीशु का काम और उसकी योग्यता है। मेरे प्रियो, आपके उद्धार का मार्ग यही है, इसी पर निर्भर करें, बस यही सब कुछ है। अतः विश्वास कोई रहस्य नहीं है, विश्वास प्रभु यीशु को निहारता है। मेरे मित्रों, विश्वास भले कामों का योगिक नहीं है। आज बहुत से लोग विश्वास को ऐसा ही मानते हैं, जैसे सलाद पर नमक छिड़कना, भले कामों के साथ विश्वास करना। मेरे प्रियो, यह तो विश्वास नहीं है। तो मेरे मित्रों, आइए हम धर्म शास्त्र में विश्वास की परिभाषा को खोजें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओवरसीज मिशनरी फेलोशिप के डॉक्टर जे ऑसवर्ल्ड सैंडर्स का कहना था, विश्वास एक श्रद्धालु आत्मा को भविष्य के वर्तमान और अनदेखी वस्तु को विद्यमान देखने में योग्य बनाता है। यही सबसे उत्तम बात है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश है। उसकी मूल यूनानी भाषा में इसका अर्थ है तथ्यों पर आधारित। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का तथ्य आधारित अंश है। डॉक्टर ए टी रॉबर्टसन तत्व को मालिकाना अधिकार कहते हैं। मालिकाना अधिकार क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, तो वह बाइबल आधारित विश्वास नहीं है। आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। इसका अर्थ है परमेश्वर पर विश्वास करना। मेरे मित्रों, मुख्य बात तो यह है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। अब आप यह न कहें कि आपके साथ बौद्धिक समस्या है, यह किसी काम का नहीं है। परमेश्वर के वचन से दूर रखने वाला पाप है। आपके जीवन में पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। मन ही तो है जो विश्वास लाता है, धार्मिकता में विश्वास लाता है। जब आप पाप का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके लिए परमेश्वर के वचन को वास्तविक बनाता है। मुझे एक मसीही संस्था के अगुआ ने अपनी पुस्तक भेजी कि मैं उसके विषय में अपने विचार को प्रकट करूं। वह पुस्तक एक अति उत्तम कृति थी, परंतु वह बाइबल को परमेश्वर का वचन सिद्ध करती थी। मैंने उससे कहा कि उसकी पुस्तक बहुत ही अच्छी है, परंतु मेरी सेवा के इस समय में मैंने देखा है कि वह पुस्तक मेरी किसी काम की नहीं है। मैं मानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और मैंने सब प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित भी किया है। अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश है। पवित्र आत्मा ने मुझ पर यह प्रकट किया है। पौलुस कुलुसिये की कलिसिया को लिखता है, एक अध्याय उसके 9 पद में, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते हैं और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर का वचन जानना आवश्यक है। पौलुस के युग में तत्वज्ञानी होते थे जो यह मानते थे कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है। अतः पौलुस कहता है कि वह भी चाहता है कि विश्वासियों को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो, परंतु वह ज्ञान जो सच्चा है, अर्थात परमेश्वर का वचन, जिसे पवित्र आत्मा उनके जीवन में वास्तविक बनाएगा। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बाइबल प्रशिक्षण में था, तो एक अविश्वासी अध्यापक के कारण मैं लगभग अध्ययन त्याग की स्थिति में आ गया था। उसकी शिक्षा मुझे विश्वास से वंचित करवा रही थी। इसी बीच मेरी भेंट एक ऐसे मनुष्य से हुई जिसके पास इस अध्यापक की प्रत्येक पदवी की तुलना में 2 पदवियां प्राप्त थी। उसने मुझे अपने मार्ग पर दृढ़ किया। उसने मुझे बताया कि उस अध्यापक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। अतः आज मेरे पास आवश्यक अंश है, मुझे अब प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। अतः विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। यही कारण है कि इब्रानियों की पत्री का लेखक लिखता है 10 अध्याय के 39 पद में, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे प्रियो, मार्ग दो ही हैं, या तो आप पीछे लौटें या आगे बढ़ें। जीवित प्राणी एक जगह रुका नहीं रह सकता है। जंगल में क्षय और पतन तो होता ही है, परंतु विकास और उन्नति भी होती है। वहां जीवन अचल नहीं है, हो ही नहीं सकता। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देख चुके हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आवश्यक अंश है। यहाँ एक और शब्द काम में लिया गया है, प्रमाण। न्यायालय में आपको अपना प्रतिवाद सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड हैं, और जब हम किसी क्रेडिट कार्ड पर सामान खरीदते हैं तो वहाँ विश्वास का आधार उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है। विश्वास में अपेक्षा नहीं होती। विश्वास का अर्थ है आवश्यक अंश और प्रमाण। यदि आप विश्वास करना चाहें तो आप विश्वास कर सकते हैं। आप मूर्खता की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, और परमेश्वर भी आपसे नहीं चाहता है कि आप ऐसा करें। वह आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं प्राचीनों, ये लोग कौन हैं? ये 3 समूहों में से एक में के हैं, वृद्ध जन या कलिसिया के अगुए, जैसा पौलुस युवा तीतुस को आदेश देता है कि वह कलिसिया में अगुए नियुक्त करे, या पुराने नियम के भक्त जन जिनका उल्लेख इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में किया गया है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बातें कर, ये बाप दादे ही प्राचीन हैं। इस पद का अनुवाद होगा, ऐसे ही विश्वास के द्वारा बाप दादों ने गवाही स्वीकार की। मेरे मित्रों, पुराने नियम के महानुभावों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो अंधकार में छलांग लगाना नहीं था, न ही ऐसा था कि वे कहते काश ऐसा हो। उनका विश्वास प्रमाण पर आधारित था। नूह ने जहाज बनाया क्योंकि उसने विश्वास किया था। यह विश्वास कैसा था? क्या यह स्थान मात्र था? जी नहीं, परमेश्वर ने उसे बहुत प्रमाण दिखाए थे, क्योंकि वह वर्षों परमेश्वर की संगति में था। आज हमारी समस्या यह है कि जब हम पर संकट आता है, तब हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है और उसे थाम लेना है, परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते ही नहीं हैं। इसलिए हमें ऐसा करने में कठिनाई होती है। यदि आप अच्छे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लें, तो जीवन की आंधियों में उस पर निर्भर करना भी आपके लिए आसान होगा। यहाँ पर लिखा है, प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। क्या इसलिए कि वे बहुत अच्छे लोग थे? जी नहीं, परंतु इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे विचार में अब्राहम एक बहुत अच्छा मनुष्य था। वह आज के सर्वोत्तम विश्वासियों से अधिक अच्छा था। संसार में उसे एक विशिष्ट पुरुष कहा गया है, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने उसे कर्मों के अनुसार धर्मी नहीं ठहराया था। उसकी धार्मिकता का कारण उसका विश्वास था। विश्वास ही के कारण प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास ही के द्वारा उद्धार पाएं, वरन विश्वास का जीवन भी व्यतीत करें। प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए क्रूस पर मर गया और हम विश्वास रखकर उसकी ओर निहारते हैं। अब हम जीवित प्रभु यीशु को निहारते हुए प्रतिदिन विश्वास का जीवन जीते हैं। यही व्यवहारिकता है। क्या आप बाजार जाएंगे? क्या आप आज काम पर जाएंगे? क्या आप स्कूल जाएंगे? क्या आप किसी पार्टी में जाएंगे? प्रभु यीशु में विश्वास करके वहां जाएं, विश्वास का जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ही जीवन जिएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उसके अनुसार चलना निश्चय ही हम में से प्रत्येक के जीवन में आनंद की बात है। वह चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें। विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। आप उसे जान लें कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज हमारे जीवन में उस विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा से हम तक पहुंचाता है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, विशेष करके यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, आज वह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। आज वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। मेरे प्रियो, यदि आज जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करते हैं और प्रभु यीशु में विश्वास करके हम बढ़ते जाते हैं। मेरे मित्रों, आइए आज के इस अध्ययन पर विचार करें और जानें कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें और अपने जीवन को उसी के आधार पर बनाए रखें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, मुझे आशा है कि आप अपने विश्वास में आगे बढ़ेंगे और उसके वचन पर विश्वास करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।